और जब माइंड थॉट क्रिएट करता है, इंटेलेक्ट उसको विजुअलाइज करती है, तो जो हम फील करते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस बनता है और उसको वो बन जाएगा फिर संस्कार। तो कभी कभी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं लेकिन हम कहते हैं मन किधर चला गया, इधर उधर चला गया है। तो हम क्या करते हैं राजयोग में, एक तो आंखें थोड़ी खुली रखते हैं। क्यों खुली रखते हैं? कि पहली बात तो नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम में से बहुतों के अंदर नींद की कमी होती है। और जैसे ही आंखें बंद होती हैं, अच्छा सा म्यूजिक चलता है और माइंड स्लो डाउन होना शुरू करता है, तो मेडिटेशन और स्लीप के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि दोनों में क्या होना है, माइंड को स्लो डाउन करना है। तो जहाँ नींद की कमी होती है तो मेडिटेशन के टाइम नींद आना बहुत नेचुरल चीज़ हो जाती है, और अगर नींद भी आती है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे, थोड़ा सा आईज को खुला रखेंगे, तो नींद नहीं आएगी। तो फिर माइंड मेडिटेशन और स्लीप के बीच में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा। सो दैट इज वन मेन रीजन कि आंखें क्यों खुली रखते हैं। और दूसरा रीजन ये है, हम कभी भी कहीं भी उसको याद कर सकते हैं, हम कभी भी कहीं भी उसको याद कर सकते हैं, हम कभी भी कहीं भी अपने आप को स्मृति दिला सकते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके लिए मुझे आंखें बंद नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो इसीलिए प्रैक्टिस आंखें बंद खोल के करेंगे। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, रेडी, जहाँ हम तीनों चीजों को यूज करेंगे, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। फोन रखते हैं, सीधा होकर बैठे। अभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल। हम जो जो थॉट्स सुनेंगे आपको उसको विजुअलाइज करना है, ताकि आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उससे हम सिर्फ घर जाने वाले हैं, वो घर जहां से हम अभी आए थे 3 दिन पहले। ओके, चले सीधा होकर बैठे, अपने बॉडी को रिलैक्स करें। और हम इस समय ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, लेकिन अब हम अपने आप को देखेंगे यहां से उठते हुए, देखते जाना है अपनी सीट से, कुर्सी से उठते हुए, गाड़ी या बस में बैठकर आबू की पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, देखते जाना है। आंखें थोड़ी सी खुली रखेंगे और सिर्फ देखते जाएंगे कि माउंट आबू से नीचे उतरते हुए और फिर स्टेशन या एयरपोर्ट, जिस विधि से हमें अपने घर पहुंचना है, अपने आप को वहां देखें। और उस विधि से अब खुद को अपने शहर पहुंचते हुए देखें। हम अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर या अपने शहर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और वहां से गाड़ी, ऑटो, बस, जो भी विधि से अपने घर चलेंगे। रास्ते को देखते जाइए, और अब हम अपने घर आकर पहुंचे हैं। घर के मेन दरवाजे पर आ जाइए। कौन से रंग का है? क्या दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है? और अब दरवाजा खोल के घर में प्रवेश करते हैं। घर को अच्छी तरह से देख लें, सब ठीक ठाक है। अगर कोई परिवार का सदस्य पीछे घर पर है, उन्हें देखें। सुबह 6:30 बजे हैं, वो क्या करते हैं इस समय? कोई सोया हुआ है तो उसको जाकर उठा दीजिए, समय हो गया उठने का। उनके पास जाकर बैठिए, देखिए अपने आप को उनके साथ बैठे हुए, और यहाँ पिछले 2-3 दिन में क्या अनुभव किया है उनको बताइए। वहां क्या हालचाल है उनसे पूछिए। अब रसोई में चलते हैं। क्या नाश्ता बनना शुरू हो चुका है? सुबह दिन की शुरुआत फल से करते हैं। अपने रेफ्रिजरेटर को देखिए, कौन से रंग का है, कौन सी कंपनी का है, क्या लिखा है उसके ऊपर। उसको खोलिए और देखिए कि आज फ्रिज में कौन से फ्रूट्स पड़े हुए हैं। उसमें से एक ऑरेंज निकालिए, बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, और निकालकर अपनी फेवरेट कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। खाना शुरू करते हैं। अब सबसे विदाई लेते हुए हम 1 सेकेंड में पहुंच गए ज्ञान सरोवर, वापस अपनी सीट पर। ओम शांति। कौन कौन घर जाके आया देखो, कितना इजी है जाना, है ना, इजी है ना। और कौन कौन ने घर में देखा भी, मतलब कितना क्लैरिटी से दिखाई दे रहा था, दिख रहा था। किस किस ने ऑरेंज खाया? अच्छा खाया। और किस किस को फील हुआ उसका? तो ये था, माइंड ने थॉट क्रिएट की, इंटेलेक्ट ने क्या किया, उसको विजुअलाइज किया, और जब हमें फील हुआ तो वो है हमारा एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस बन जाता है संस्कार। ये मेडिटेशन था जहाँ हमने तीनों चीजों को यूज किया, लेकिन ये मेडिटेशन किसके साथ था? अपने इस घर के साथ था। ये मेडिटेशन किसके साथ था? अपने इस परिवार के साथ था। कौन कौन को परिवार का सदस्य दिखा घर पे बैठा हुआ? दिखा। किस किस ने बात की उनसे? कि कितना इजी है, क्योंकि थॉट से ही तो बात करनी होती है ना। हाँ, अब हम फिर से करेंगे, लेकिन अब हम इस घर नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम उस घर जाएंगे। यहाँ हम फैमिली से मिले थे, वहां किससे मिलेंगे जाके? वहां परमात्मा से मिलेंगे। अब यहाँ तो फिजिकली गए थे, फ्लाइट से गए थे, ट्रेन से गए थे, वहां कैसे जाएंगे? वहां जस्ट मैं आत्मा, आई द बींग। ठीक है, करें फिर से एक बार। चलो सीधा होकर बैठे। पहले तो बॉडी से हमें अपने आप को, इसीलिए हर रोज दिन में बार बार ये प्रैक्टिस जरूर करना, आई एम अ सोल मास्टर ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, लेकर आए अटेंशन को सेंटर ऑफ द फोरहेड। थोड़ा सा आंखों को खुला रखेंगे और भ्रिकुटी के बीच देखेंगे, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल जैसे आकाश में सितारे दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल वैसा देखना है। कभी कभी इतना क्लैरिटी से दिखाई नहीं देता है, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। बस ध्यान ये रखते हैं कि कुछ और नहीं देखते। भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, एंड इसको फील करें, मैं एनर्जी हूं, मैं शक्ति हूं। जैसे मैंने ये कपड़ा अपने शरीर पर पहना है, ऐसे ही मुझ आत्मा ने ये शरीर पहना हुआ है। ये मेरा चोला है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं डिवाइन आत्मा हूं। देखें उस सितारे को, ब्राइट लाइट, प्योरिटी भी है, पावर भी है। और अब विजुअलाइज करें कि मुझ आत्मा से किरणें निकल कर चारों तरफ फैल रही हैं, जैसे लाइट की किरणें कैसे फैलती हैं। मुझ आत्मा सितारे से किरणें चारों तरफ इस गार्डन में फैल रहे हैं। आई एम रेडिएटिंग प्योरिटी एंड पावर। अब मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस देह की दुनिया से उड़ते हुए अपने घर, जहां से मैं आत्मा आई थी, वहां चलती हूं। तो देखेंगे मैं आत्मा, दैट लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट, ऊपर की तरफ उड़ते हुए आबू के ऊपर, भारत के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, और आकाश और तत्वों को क्रॉस करते हुए मैं आत्मा ऊपर, गोल्डन लाइट की दुनिया है, जैसे एक सुनहरा आकाश है। यह हम आत्माओं का घर, वहां पहुंच के देखिए बहुत सारे लिटिल लिटिल स्टार्स, ये आत्माओं का घर है, ये मुझ आत्मा का घर है, ये शांति धाम है, संपूर्ण शांति। और अपने सामने आप देखिए मुझ आत्मा के परम पिता, निराकार परमात्मा, मेरी तरह वो भी एनर्जी है, लाइट है, वो माइट है, सर्वशक्तिवान परमात्मा, उनकी किरणें बेहद में चारों तरफ फैल रही है। अपने आप को देखें, मैं आत्मा परमात्मा के सामने आकर बैठ गई। मन में कोई बात है, कोई पुराना घाव है, कोई ऐसी बात जो किसी से कभी नहीं कही, मन में कोई प्रश्न है, उनके सामने रखिए। कोई डिसीशन लेना है, उनके सामने रखिए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बात करता है कि मुझे नहीं पता क्या करना है, आप मुझे बताइएगा, अपना प्रश्न, अपना कंफ्यूजन, अपना कोई भी डाउट, या मन पे कोई दर्द, सब बताइए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, साथ साथ हमें ये देखना है कि सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझे आत्मा में भर रहे हैं। जैसे एक लेजर बीम होती है, जैसे किरणें होती हैं, परमात्मा की शक्तियां मुझे आत्मा में भर रही है। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरती जा रही हूं। जीवन में कभी भी कुछ लगा हो कि मुझसे कोई गलती हुई है, वो क्षमा का सागर है, प्यार का सागर है। कह दे और खत्म। संपर्क में आना, ईश्वरीय शक्तियों से अपने आप को भरते हुए वापस अपने कर्म क्षेत्र पर भृगुटे के बीच अपनी सीट पर मुझ आत्मा से ये शक्तियां मेरे पूरे शरीर में रेडिएट कर रही है। मेरे से ये शक्तियां मेरे परिवार को, मेरे सेवा साथियों को और मेरे पूरे विश्व को फैल रही है। सोचना हमने गए हुआ नहीं किया नहीं, इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि जर्नी पता होनी चाहिए कि नहीं है। आज दिन तक हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और हर चीज में हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती है क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन अब एक स्टेप और आगे लेना है, तो मेडिटेशन मतलब परमात्मा से एक रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप। मेडिटेशन मतलब परमात्मा से कम्युनिकेशन, एक टू वे कम्युनिकेशन। आज तक जब हम प्रार्थना करते तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, हम सुनाते हैं और हम उठ के चले जाते हैं। क्या परमात्मा से कम्युनिकेशन हो सकता है? हम में से किस किस ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया कि हमने किसी को याद किया, उन्होंने भी उसी टाइम याद किया, हमारे मन में कोई क्वेश्चन था उन्होंने पहले ही आंसर देना शुरू कर दिया, हमने फोन उठाया वहां से उनका ही फोन आ गया, या जब हम पहले बचपन में स्कूल में थे या आपके बच्चे आज, हम सोचते थे आज मुझको ये खाना है ये खाना है, और घर में जाऊंगी मैं मम्मी को बोलूंगी मुझको ये खाना है और घर पहुंचो तो वही बना हुआ होता था। ऐसे किया एक्सपीरियंस कभी? ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? तो तब हमें नहीं पता था, तो हमें लगता था कोइंसिडेंस, हमने सोचा ये खाना है घर गए तो यही बना हुआ होता था। लेकिन जब वो बच्चा सोच रहा है मुझे ये खाना है ये खाना है ये खाना है, तो वो थॉट एक एनर्जी है, वो किस तक पहुंचेगी? जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊंगी उनको बोलूंगी मुझको ये खाना है ये खाना है, वो थॉट वो कैच करते हैं। तो या तो वो हमें फोन कर देते हैं क्योंकि हम उनको फोन करने का सोच रहे थे, या वो खाना बना देते हैं जो हम कह रहे थे, या वो उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे देते हैं जो हम सोच रहे थे कि हम उनसे पूछेंगे। होता है टेलीपैथी ऐसा? हाँ। तो ये टेलीपैथी किसके बीच में है? आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी है, क्योंकि दोनों एनर्जी क्रिएट करती है और दोनों एनर्जी रेडिएट करती है, तो वो एनर्जी एक दूसरे को रीच होती है। तो जैसे आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी होती है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी होती है। हो सकते है? अगर हम अपने पेरेंट को बोल रहे हैं मुझे ये खाना है खाना है और वहां तक पहुंच जाता है, तो क्या हम उसको जो पूछेंगे वो नहीं पहुंचेगा उधर तक? पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अगर हम किसी के लिए सोचते हैं कि मुझको उनसे ये क्वेश्चन पूछना है और आंसर वो खुद ही अपने आप ही दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं आपको कैसे पता था मुझको ये पूछना है, आपने पहले ही आंसर दे दिया, सामने वाला कहते हैं पता नहीं मेरे को नहीं मालूम मैंने क्यों ये आंसर दिया। इट इज कम्युनिकेशन एनर्जी। तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? कैसे होगा वो सेकेंडरी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो भी आत्मा ही है, जैसे मैं आत्मा आप आत्मा वो आत्मा, लेकिन वो परमात्मा। परमात्मा मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप वो शांति का सागर, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप वो प्यार का सागर। आत्मा और परमात्मा में जो मूल फर्क है वो ये है कि आत्मा जन्म और मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो कांस्टेंट एनर्जी है उधर ऊपर। अब ये बताइए, आत्मा के साथ टेलीपैथी ज्यादा इजी है या परमात्मा के साथ? किसके साथ टेलीपैथी ज्यादा वर्क करेगी, आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ? परमात्मा के साथ ज्यादा वर्क करेगी। क्यों ज्यादा वर्क करेगी? हाँ, क्यों ज्यादा वर्क करेगी? हाँ, क्योंकि वो परमात्मा है। जब हम आत्मा के लिए कोई थॉट क्रिएट करते हैं, सपोज अभी मैं वो बहन के लिए थॉट क्रिएट करूं, और इसको आप घर पे करना, टेलीपैथी को ना बहुत यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इसको यूज करेंगे इसकी पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी से इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। आप इस स्थिति पर पहुंचेंगे कि स्पेशली आपकी फील्ड में, कि आप कहीं हैं, दूसरी जगह हैं, और आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, आप जो साधन यूज कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, या वो वहां तक कनेक्ट नहीं हो रहा, आप सिर्फ साइलेंस में बैठकर थॉट भेजिए, उस आत्मा को याद कीजिए और उनको थॉट भेजिए, उनको पहुंच जाएगी, प्रोवाइडेड हमने उस मेथड को पहले यूज किया है, तो हम उस मेथड में कोई डाउट नहीं आता, हमें सिर्फ बैठना है और उन तक एक थॉट भेजनी है। अब आत्मा और आत्मा के बीच क्या होता है, अगर मैं अभी ये बहन को यहां से थॉट भेजूं, ये थॉट कैच करेगी, लेकिन थॉट तब कैच करेगी अगर इनका माइंड साइलेंट होगा। लेकिन अगर इनके माइंड में बहुत शोर चल रहा है, मतलब कोई वेस्ट थॉट्स, पते कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई कुछ चल रही है, तो फिर मैंने तो फोन किया लेकिन उनका एंगेज आ रहा है। इसलिए हमारी टेलीपैथी कभी कभी वर्क करती है, कभी कभी वर्क नहीं करती है, डिपेंडिंग ऑन रिसीवर कितना क्लियर है। लेकिन परमात्मा को फोन कभी, वहां कोई वेस्ट थॉट्स चलनी है नहीं, वहां कोई नेगेटिव थॉट्स चलनी है नहीं, वो आत्मा कैसी है, बिल्कुल स्थिर। तो वहां जो भेज दिया ना, तो वहां का पहुंचना तो सर्टन है। अब सिर्फ सेकंड ध्यान रखना है कि वहां से जब आंसर आएगा तो हमारा फोन भी इंगेज नहीं होना चाहिए, हमारा फोन इंगेज नहीं होना चाहिए। तो राजयोग अर्थात परमात्मा के साथ एक टू वे कम्युनिकेशन। शुरू शुरू में सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो हम तो अपनी कोई भी बात उससे ही करते हैं सिर्फ, और सिर्फ बात नहीं करते, आंसर भी मिलता है, क्लियर क्लियर आंसर मिलता है कि ये करना है ये नहीं करना है। और कभी कभी तो कुछ पूछा भी नहीं होता, तो इंस्ट्रक्शन ही मिल जाता है ये करना है, तो हम बोलते नहीं पर मेरे को ये नहीं करना है, ये करना है। एंड वो इतना क्लीन आता है, इतना क्लियर आता है कि उसके बाद उसको न करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि जो वो इंस्ट्रक्शन था वो हमारे लिए बिल्कुल सही था, वो हमारे लिए बिल्कुल सही था, वो हमारे लॉजिकल माइंड ने सोचा ही नहीं था कैसे भी हो सकता है, तो वो इंस्ट्रक्शन आता है। तो फिर राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का कम्युनिकेशन, और राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का पर्सनल रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में कॉन्वर्सेशन के बिना कोई रिश्ता नहीं बनेगा, तो आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं कि भगवान है, तो फिर मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, और अगर मेरा रिश्ता है तो फिर मेरी उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, मुझे उनके आंसर मिलने चाहिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और एक बार हम ये करना शुरू कर दें, तो फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछते सिर्फ कि बहुत लाइफ में कोई मुश्किल आए, नहीं, रिश्ता वो नहीं होता जिसके साथ आप कभी कभी बात करते हैं। रिश्ता कौन सा होता है जिसके साथ हम हर बात करते हैं। आप देखो, किसी को आप कभी कभी मिलो ना, तो आपकी एक दो मिनट में कॉन्वर्सेशन पूरी हो जाएगी। अच्छा, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक। आप कैसे हैं? ठीक। और घर पे सब ठीक? हाँ ठीक। आपके घर पे सब ठीक? ठीक। दुनिया भी ठीक ही चल रही है, उसके बाद पता ही नहीं होता क्या बात करनी हो। तो जिनको हम कभी कभी मिलते हैं हमारी कम बात होती है, जिनको हम महीने में एक बार मिलते हैं हमारी ज्यादा बात होती है, जिनसे हम रोज बात करते हैं उनसे हमारी सबसे ज्यादा बात होती है। तो इट्स ऑपोजिट, ऐसा नहीं है कि जिनको कम मिलते हैं उनसे ज्यादा बात होती है, जिनसे रोज बात होती है उनसे ज्यादा बात होती है, क्योंकि उनके साथ हम अपनी सब बात शेयर करते हैं। तो आज से उसके साथ रिश्ता जोड़ने का फर्स्ट स्टेप है, उसके साथ अपनी बात किया कीजिए। परमात्मा को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बैठे प्रार्थना की ओर उठ गए, नहीं, वो मात पिता और बच्चे का रिश्ता है, वो दोस्त और दोस्त का रिश्ता है, उसके साथ अपनी बात करनी है। अपनी बात, छोटी से छोटी बात, ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अगर हर छोटी छोटी बात करेंगे ना तो प्रॉब्लम तो सुनानी नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम बताएगी उधर। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप कनेक्शन, सेकेंड स्टेप रिलेशनशिप, थर्ड स्टेप एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो अगर मन में कोई भी बात है ना, यहां से जाने से पहले, यहां से जाने से पहले आपने देखा होगा कि कैंपस में मेडिटेशन रूम है, उसको लिखा हुआ है बाबा का कमरा। तो हम बाबा किसको कहते हैं? पहले निराकार परमात्मा को, क्योंकि वो हमारा पेरेंट है। तो पेरेंट को हम भगवान या ये सब नहीं बोलते। जैसे आप जहां ड्यूटी पर हैं, आपके पास रोल्स हैं, पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, आपके आपके ऑफिस में कोई आपको सर बोलेगा, कोई मैडम बोलेगा, बट आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? आपके बच्चे आपको सर मैडम बोले बात बताएंगे? आपके टाइटल से आपसे बात करेंगे? नहीं। वो कैसे बात करेंगे? मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, मामा बोलेंगे, जो ऐसे बोलेंगे। इसी तरह भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये उसका टाइटल है, ये उसका टाइटल है। टाइटल से बात करना बड़ा ऑफिशियल होता है, लेकिन वो हमारा पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं, और इसीलिए हम उसको बाबा कहते हैं। तो जब लिखा है बाबा का कमरा, मतलब वो मेडिटेशन रूम है जहां हम बैठकर निराकार परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उसको याद करते हैं। तो यहां से जाने से पहले उस कमरे में जरूर जाके बैठिएगा, और अगर कुछ भी बात होगी तो वहां पर सरेंडर करना उस बात को, और अगर कोई भी आंसर चाहिए उस क्वेश्चन को रखना कि मेरे को ये बात का आंसर आपसे चाहिए। और एक बार सरेंडर कर दिया तो उसके बारे में सोचना बंद करना। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट को बोल देता है तो उसके बाद बच्चा सोचता नहीं है, बोल दिया मैंने उनको, वो बता देंगे क्या करना है, ऐसे ही होता है ना, सरेंडर। और फिर आप देखना आपके पास आंसर आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। और वो आंसर कैसे आएगा? अगर आपके माइंड में दो तीन ऑप्शंस हैं तो एक ऑप्शन रह जाएगा, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। आप 100% कन्विंस्ड हो जाएंगे कि कंफ्यूजन ही नहीं है कोई, क्लैरिटी कंप्लीट है, यही वाला ऑप्शन है। या सामने से कोई आकर वो आंसर देके चला जाएगा आपको, बट वो आंसर तो आना ही है अगर हम उसको सरेंडर करके उसके बारे में फिर अपने इंटेलिजेंस को नहीं लगाना है, फिर हाँ नहीं ऐसे करो ऐसे, पूछ लिया उसको कि क्या करना है, बता दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है रिलेशनशिप क्रिएट करने का। घर से निकलने से पहले 2 मिनट बात करके चले, हम यहां जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप हमें यूज करना, आप, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, आप मुझे यूज करके देश की सेवा कराना, देश के लिए जो सही है आप मुझसे करवाना, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। अगर हम निमित्त बनकर, इंस्ट्रूमेंट बनकर चलते हैं तो जीवन बहुत सहज हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। तो घर से निकलने से पहले बात करें, घर वापस आने के बाद बात करें, दिन में बीच बीच में बात करें, तो फिर वो रिश्ता क्या हो जाता है, बनता जाता है। तो इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप। अब जहां जहां भी हम पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं वहां साथ साथ हमें ब्रह्मा बाबा का भी चित्र दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा बाबा गुरु नहीं है, ब्रह्मा बाबा टीचर भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा इस विद्यालय के फर्स्ट स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट है जिसको परमात्मा ने निमित्त बनाकर हम बच्चों को ये ज्ञान दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो वो फर्स्ट स्टूडेंट थे जो उसको सीख रहे थे, लेकिन वो स्टूडेंट सीख सीख कर जो बनना है वो वहां तक, उस स्थिति तक पहुंचे, तो उनका फोटो उसी लिए लगाया जाता है कि अगर एक जना उस स्थिति तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं तो उसको उस स्थिति से याद करके। बाकी जब हम योग में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तो हमें याद सिर्फ किसको करना है, निराकार परमात्मा को याद करना है। कल हमने देखा कि कलयुगी आत्मा सत्ययुगी कैसे बनेगी, बैटरी चार्ज कैसे होगी, पावर हाउस से कनेक्ट करके। तो पावर हाउस से तो हमेशा ही कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय वायुमंडल में जो वाइब्रेशन है, दुनिया में बहुत दुख दर्द चिंता ज्यादा फैल जाता है, तो वायुमंडल की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, नीचे आती है। तो कभी कभी हम अनुभव करेंगे कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन मन जितना खुश होना चाहिए, जितना शांत होना चाहिए, वो नहीं है। और उसका कारण क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ द प्लैनेट। जैसे कोविड के पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया बहुत डिफरेंट है मन की स्थिति के अंदर, क्योंकि 2 साल ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स पे मिलियंस ऑफ लोगों ने फियर क्रिएट किया, डर क्रिएट किया, चिंता क्रिएट की, 2 साल क्रिएट किया। कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन हवा में वो डर और चिंता क्या हो गई, फैल गई, वो एकदम फैल गई, और इतनी फैल गई कि कोविड खत्म हो गया, लोगों का डर नहीं खत्म हुआ अभी तक। और कोविड के बाद तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों को भी डर, पैनिक, एंजाइटी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, वायुमंडल। तो वायुमंडल एंड वाइब्रेशन एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर होता है। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, दुनिया ने बहुत तरक्की की है, ऊपर 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 जा रहे हैं, लेकिन मन की स्थिति जो है वो ऊपर नहीं जा रही है, वो ऑपोजिट जा रही है। इसलिए कल सबने, मेजोरिटी ने हाथ उठाया, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस समय क्या है, वायुमंडल थोड़ा नीचे जा रहा है, तो स्थिति भी क्या हो रही है, नीचे जा रही है। अगर करोड़ों लोगों की स्थिति नीचे जाती गई तो हमारी स्थिति भी उसकी तरफ पुल्ड हो जाएगी। इसीलिए मेडिटेशन रोज क्यों करना है, ताकि कॉन्शियसली हम अपनी स्थिति को कहां लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, हम हाईएस्ट वाइब्रेशन के पास जा रहे हैं। एक चीज याद रखना, जिसको भी आप याद करेंगे, आप इस समय यहां बैठे बैठे किसी को भी याद कर लीजिए, जिसको आप याद करेंगे उसकी वाइब्रेशन के साथ आपकी वाइब्रेशन जुड़ जाएगी। इट इज लाइक गोइंग ऑनलाइन, जो वेबसाइट एंटर की उसका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। इसीलिए बच्चा दूसरी जगह होता है, लेकिन पेरेंट घर बैठे बैठे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ठीक नहीं है। लोग बोलते, भाई सब कुछ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, मुझको फील हो रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ठीक नहीं है। कैसे फील होता है दूर बैठे बैठे, क्योंकि वो बच्चा दूसरी जगह है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम में है उसको कौन याद आ रहा होता है, उसको पेरेंट याद आता है। पेरेंट तो वैसे ही बच्चे को याद कर रहा होता है, जैसे ही दोनों की याद मिलती है वहां का डेटा यहां डाउनलोड हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान से याद करना, उन्हीं को याद करना जिनकी वाइब्रेशन किधर है, ऊपर है। लोअर वाइब्रेशन को याद करेंगे तो कौन सा डेटा डाउनलोड हो जाएगा, इसीलिए बचपन से सीखा था कि सब कुछ करते हुए किसको याद करते रहो, परमात्मा। क्यों याद करना है उसको बार बार, क्यों याद करें उसको बार बार, उसका पर्पस क्या है याद करने का बार बार, क्योंकि वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है। और जितना हम हाईएस्ट वाइब्रेशन को याद करते रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी। तो इसलिए करना है, इसलिए रोज सुबह करना है, रात को सोने से पहले करना है, घर से निकलते हुए करना है, आते हुए करना है, और दिन में बीच बीच में आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुक कर करेंगे, तो हमारी एनर्जी ऐसे नहीं जाएगी, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। फिर शांति और खुशी चाहिए नहीं होगा, शांत और खुश रहते हुए वो वाली वाइब्रेशन आप चारों तरफ फैला रहे होंगे, क्योंकि यही दुनिया को इस समय चाहिए ना, राइट। और इसको करने की सबसे सहज विधि है कि जब आप यहां से वापस जाएंगे, आप एक बार अपने नजदीक के सेंटर पे जाकर इसको अच्छे से फिर से सीख लीजिएगा, क्योंकि यहां तो हम बहुत बड़े संगठन में सीख रहे हैं, वहां आप जाएंगे तो 1-on-1 सीखेंगे, 1-on-1 बहन आपको सिखाएंगे। तो तो ये जरूर करना, जिसको भी अपनी जर्नी को ऊपर लेकर जाना है वो ये ना समझे कि 3 दिन में हो जाएगा। कोई भी चीज 3 दिन में नहीं होती है। 3 दिन में हम सिर्फ क्या है और कैसे करना है वो सीखते हैं। विधि को और गहराई से हम वापस जाकर 1-on-1 ही सीख सकेंगे। अब कल हमने देखा, उंगली रखे यहां, मैं कौन हूं? आत्मा। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ठीक है। अब जितनी देर मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रहे हो, मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वर्ड स्पीक कर रही हूँ और मैं कर्म में आ रही हूँ। ये सर हर क्षण चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब हमने कल देखा, मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, निकालो, आत्मा निकली शरीर से, मैं यहाँ आई। अब पीछे मुड़ के देखो, क्या क्या पीछे रह गया, क्या क्या पीछे रहता है। मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो क्या क्या पीछे रहता है? पहले तो शरीर ही पीछे रह जाता है, और क्या पीछे रहता है? परिवार, मकान, काम, नाम, शान, औदा, सब पीछे रहता है। अगर सब कुछ पीछे रहता है तो साथ में क्या जाता है? तो इसीलिए दुनिया कहती है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। ये पूरा सच नहीं है। ये सच इसलिए है कि हाँ, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, ना साथ में लेकर आए थे ना साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आत्मा खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं आत्मा अपने साथ दो चीजें लेकर जाती हूँ, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। क्योंकि ये सारा दिन कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? आत्मा पर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तो मेरे साथ दो चीजें जाती हैं, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। ड्रोन है तो बंद करेंगे उसको। मेरे कर्म और मेरे संस्कार। अब मैं आत्मा यहां से निकली, वहां गई, मैं आत्मा जाके माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ और कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कुछ ही दिनों के अंदर पंडित जी उसके जन्म पत्री बना देते हैं, राइट। हम में से किस किस के पास जन्म पत्री है, ना जन्म पत्री? तो वो आप अपने पेरेंट्स को पूछेगा, कौन से दिन बनी थी बच्चा पैदा हुआ? पंडित जी को टाइम बताया, पंडित जी ने 3-4 दिन में जन्म पत्री बनाकर दे दी। वो जन्म पत्री क्या बताती है? वो जन्म पत्री उस बच्चे का भाग्य बताती है कि ये होगा, इस एज में ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब वो जन्म पत्री किसका भाग्य बता रही है? उस बच्चे का भाग्य बता रही है। लेकिन उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक, उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक। तो जब बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया तो कर्म के बिना भाग्य कैसे बन रहा है? क्यों भाग्य बता रही है जन्म पत्री? क्योंकि वो भाग्य उस छोटे से शरीर का नहीं है, लेकिन वो भाग्य किसका है? उस शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा ने। और उस आत्मा का भाग्य कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि वो आत्मा बहुत सारे कर्म और संस्कार करके आई है। तो एक क्षण में मैं आत्मा जब इस शरीर में हूं, जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूं, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। 31 मार्च को क्या बन जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आत्मा जाके शरीर में प्रवेश करती हूं, वो जो जन्म पत्री होती है वो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो ये निकलना मेरा 31 मार्च है, वहां पैदा होना मेरा 1 अप्रैल है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसी होंगी? बिल्कुल क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसी होगी? बिल्कुल आइडेंटिकल। इसीलिए हम कहते हैं, इस बच्चे ने ऐसा कुछ किया नहीं, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने कुछ नहीं किया, इसने के साथ ऐसे, क्योंकि हम उसके जीवन को कितना देख रहे हैं, सिर्फ नए शरीर में आने के बाद। इसीलिए लाइफ के इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इनके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी कुछ भी नहीं किया होता और बहुत बढ़िया कुछ हो जाता है, हम कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, बट कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। सारा कुछ किस अनुसार हो रहा है? सारा कुछ कुछ किस अनुसार हो रहा है? बचपन से हमने एक चीज सुनी थी कि जो जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी कैसे हिलता है? भगवान की मर्जी से हिलता है। कौन कौन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? अच्छा, अब एक सेकंड सोचेंगे, अगर सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा हो तो फिर सबका भाग्य कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये भगवान भाग्य लिखते हैं कि युद्ध चल रहा है, ये भगवान भाग्य लिखते हैं कि अचानक इतने लोग शरीर छोड़ते हैं, ये भगवान भाग्य लिखते हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, भरे हुए इतनी बीमारी है, ये भगवान भाग्य लिखता है एक बच्चा अपना स्कूटर लेके कॉलेज जाता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब भगवान लिखता है क्या? अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो कैसा भाग्य लिखता, कैसा लिखता? चलो अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखो तो कैसा लिखोगे, बोलो एक वर्ड में बोलो कैसा लिखोगे? हाँ, कभी कभी थोड़ा सा बुखार, भाई थोड़ा सा बुखार से क्या होता है, बुखार भी नहीं लिखेंगे आप, और आज क्या कुछ हो रहा है, मार्क्स कितने आएंगे उस बच्चे के हमेशा। चलो अपने बच्चे का भाग्य ने लिखो, किसी ने आपको इस लाइफ में बहुत 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 तंग किया हो, उसके बच्चे का भाग्य लिखो, कैसा लिखेंगे आप? उसके बच्चे के भाग्य में लिखेंगे बीमारी? नहीं, नहीं लिखेंगे। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान, मैं ही भाग्य परफेक्ट लिख दूं सबका, और वो भगवान वो कैसा भाग्य लिखता है, वो कैसा भाग्य लिखता है? तो अगर भगवान भाग्य लिख रहा हो तो सबसे पहला क्राइटेरिया भाग्य कैसा होगा, परफेक्ट। परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब अगर आपके दो बच्चे हैं तो क्या आप एक का ज्यादा परफेक्ट एक का कम लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? एक जैसा। तो ये नॉर्मल लॉजिक है कि अगर मैं भी किसी का भाग्य लिखूं, अपने दो बच्चों का लिखे, तो एक तो परफेक्ट लिखेंगे और एक दोनों का इक्वल लिखेंगे। अगर भगवान हम बच्चों का भाग्य लिखे तो भी ये दोनों चीजें फॉलो होंगी, एक तो वो परफेक्ट लिखेंगे और एक वो हम सबका इक्वल लिखेंगे। आज ना इक्वल है ना परफेक्ट है। तो एक और चीज बचपन से सुनी थी कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों अनुसार हो रहा है, राइट या रॉन्ग? तो दोनों में से कौन सी बात राइट है फिर? या तो मेरे साथ जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, या जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों अनुसार हो रहा है। दोनों में से क्या राइट है? अब दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। एक में तो जो कुछ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल से, मेरे से, और दूसरा जो कुछ हो रहा है वो पूरा ऊपर से कंट्रोल है। ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो दोनों में से कौन सा होगा? कर्म हमारे एक जैसे नहीं है और इसीलिए भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं हो सकता। कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी जाने अनजाने कुछ न कुछ गलती हो जाती है, तो भाग्य में भी कुछ न कुछ कभी कभी आ जाता है। तो दोनों में से अब कौन सा होगा, भगवान लिख रहा है या मेरे कर्मों अनुसार हो रहा है, कौन सा है? अब उंगली कहाँ आ जाएगी? अभी तक उंगली कहाँ थी? आपने देखा जीवन भर हमने किसी ना किसी पर उंगली रखी है, छोटी छोटी चीजों के लिए इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके लिए, बड़ी चीज के लिए उसकी वजह से, सिर्फ एक किस पे नहीं रखी, बाकी सब पर रख दी। और राजयोग मतलब सब तरफ से उंगली घूम के सिर्फ एक पर ही आ जाती है, सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी वजह से, मेरी वजह से। कल हमने देखा गुस्सा भी किया तो किसकी वजह से, मेरी वजह से। हर्ट किया तो किसने किया, मैंने किया। इसी तरह मेरा भाग्य भी किसने लिखा, मैंने लिखा। कैसे लिखा, कैसे लिखा? अपने कर्मों से। इसको पक्का कर लेना है, आज से कभी ब्लेम उधर नहीं डालना है, उधर नहीं। उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता अर्थात जो भाग्य लिखने का विधान सिखाता है, मेथड टू क्रिएट अ राइट डेस्टिनी, मेथड टू क्रिएट राइट कर्म। भगवान हमें ज्ञान देता है, शक्ति देता है, प्यार देता है। जैसे आप अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म कौन करता है? बच्चे का कर्म आप कर सकते हैं उसके लिए? नहीं। आप बच्चे की डेस्टिनी नहीं लिख सकते, आप बच्चे को राइट डेस्टिनी क्रिएट करने की गाइडेंस दे सकते हैं। फाइनली तो बच्चे की डेस्टिनी किस अनुसार बनेगी? तो जब बच्चे से कभी कुछ गलत हो जाता है और उसका परिणाम आता है तो पेरेंट क्या कहते हैं, तुमको कितना समझाया, कितना समझाया, कितना समझाया, फिर भी तुमने नहीं किया, देखो अभी भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना कर्म भुगतना पड़ता है। तो भगवान का रोल क्या है? ज्ञान देना, प्यार देना शक्ति देना, हमारा रोल क्या है उसको लेना और सही कर्म करना, और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम आएगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अब अगर अपनी डेस्टिनी में कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? आगे क्या होने वाला है ये जानने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ भी हो उसके लिए हम पावरफुल हैं, इसकी जरूरत होती है। अब एक मिनट अपने हाथ को ऐसे पकड़े, एक बॉल रखे उसमें। अब अपनी कर्म की एनर्जी कैसे फ्लो होती है, और कर्म क्या है? सिर्फ बिहेवियर कर्म नहीं है, इंटेंशन, थॉट, वर्ड, बिहेवियर, मतलब भाव और भावना, और फिर मनसा वाचा कर्मणा, ये सब एनर्जी है। मैं अगर यहां सबसे बहुत प्यार से बात कर रही हूं लेकिन अंदर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूं, मेरा कर्म पहले थॉट लेवल पे है। हमारे वर्ड्स कम होते हैं, हमारे थॉट्स ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी को मिले और आपने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहना, और अंदर से सोचा कितना बोर किया, तो कौन सा कर्म बना? कौन सा कर्म बना? चलो चेक करो, चेक करो, कौन सा कर्म बना? चाहे तो बहुत इजी है, कौन सा कर्म बना? अगर आपने अपने सीनियर को कहा यस सर यस सर यस सर, और अंदर सोचा कितना तंग करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कौन सा कर्म बना? कौन सा कर्म बना? तो कर्म की चेकिंग बड़ी ध्यान से करनी है। कर्म इज नॉट वर्ड्स एंड बिहेवियर, कर्म इज इंटेंशन, थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर। अगर इंटेंशन पे चेक कर लिया, थॉट्स पे चेक कर लिया, वर्ड एंड बिहेवियर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्यों इंटेंशन और थॉट पे चेक करना है? फिर बाद में ये नहीं बोलना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी यहां से नहीं रेडिएट हो रही, सबसे पहले कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। अब बॉल को पकड़े, अब ये बॉल को ध्यान से फेंकना, ये मेरा कर्म है, ये जैसे जाएगा वैसे ही ये वापस आएगा। पहला क्राइटेरिया, सब लोग कैसे फेंक रहे हैं वैसा नहीं फेंकना है, मतलब दुनिया क्या कर रही है वैसा कर्म नहीं करना है। दुनिया ने गलत फेंका तो हमारा भी गलत जाएगा, सोच समझ के कि ये जैसा जाएगा ये वैसा ही वापस आएगा। अब इंटेंशन, थॉट, वर्ड, बिहेवियर, ये एनर्जी है जो हम फेंकते हैं बाहर। अब फेंके इसको, ये आपने जैसे ही फेंका मतलब आपसे वो एनर्जी निकलकर बाहर चली गई है। जो बॉल वापस आती है वो कौन सी होती है? सिचुएशंस, सिचुएशन आती है हमारे सामने, व्यक्ति का बिहेवियर वो हमारे पास सामने से आता है, शरीर में कोई उतार चढ़ाव वो सामने से आता है, क्योंकि आत्मा के लिए बॉडी भी अलग ही चीज है, और प्रकृति। आजकल देखो प्रकृति कितनी उथल पुथल कर रही है हमारे साथ, लेकिन ये कर्म किसने किया था? प्रकृति जो हमारे साथ आज रिस्पॉन्ड वापस कर रही है, जो रिटर्न हमें दे रही है, ये किसके कर्म का परिणाम है? हमने किया। हमारे कुछ किए बिना हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, ना अच्छा ना ऑपोजिट। ठीक है, अब पकड़े एक बार, जब मैं आत्मा सोच रही हूं, बोल रही हूं, कर रही हूं, ये है मेरा कर्म। अब पकड़े, वापस ऐसे रखे हाथ को, मेरे साथ जो हो रहा है बहुत बढ़िया, जो हो रहा है बढ़िया, जो हो रहा है अच्छा, जो हो रहा है मुश्किल, जो हो रहा है और जो थोड़ा सा नॉट अच्छा हो रहा है, जो भी ऐसे मेरी तरफ आ रहा है वो है सिचुएशंस, पीपल्स बिहेवियर, कुछ भी मेरी लाइफ में, वो बॉल कौन सी है जो वापस आ रही है? फिर से फेंके, ये बॉल हम फेंक रहे हैं, ये बॉल वापस आ रही है। अब जैसे ये बॉल वापस आएगी, पहले हम क्या करते थे, बहुत देर सिर्फ इसमें ही वेस्ट कर देते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब आंसर करें, ये बॉल वापस क्यों आई है? अच्छे से बोल दो, यहां फिट हो जाना चाहिए, जीवन भर अभी उसके बाद उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करने के, ये क्यों हुआ? इमीडिएटली एनर्जी किस पे लगानी है, अब क्या करना है, क्यों हुआ ये बॉल वापस क्यों आई? बोलिए बोलिए, ये बॉल वापस क्यों आई? आज से इसको पक्का कर लेना, कुछ भी होगा ना लाइफ में, वो माइंड कहेगा ये क्यों हुआ, बोलना मैंने फेंका था, मैंने फेंका था। सारी पावर किसके पास आ जाती है? अपने पास, क्योंकि पावर उस बॉल में नहीं है जो वापस आ रही है, पावर उस बॉल में है कि जब वो वापस आ रही है हम कौन सी नई बॉल फेंक रहे हैं। कल हमने देखा कोई हमारे से गलत तरह से बात करता है, इतना छोटा सा भाग्य भी, अब लेकर आए उनको, गलत तरह से जो बात करता है वो कौन सी तरफ है, वो इस तरफ है, वो इस तरफ से मेरे साथ गलत तरह से बात कर रहे हैं। बॉल कैसे आ रही है? बॉल ऐसे आ रही है। क्या मैं आने वाली बॉल को रोक सकती हूँ? क्या हम आने वाली बॉल को रोक सकते हैं? यस और नो? कैन वी चेंज द अदर पर्सन? नो। कैन वी स्टॉप द बॉल फ्रॉम कमिंग बैक? नो। बॉल पर हमारी पावर कब थी? जब हमने फेंका। इसीलिए सोच कर फेंको, सोच कर फेंको, ये बॉल फेंकने लायक है। एक बार फेंक दिया देन कंट्रोल ऑन दैट इज ओवर। अब वो जब बॉल वापस आ रही है आई कैन डू नथिंग अबाउट इट, इट्स ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। लेकिन जब वो बॉल वापस आ रही है, मतलब जब वो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, अब मेरे पास कौन सी पावर है? अब मेरे पास कौन सी पावर है? अब मेरे पास कौन सी पावर है? अब मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है? वो मेरी न्यू बॉल है। अब मैं इनके बारे में कैसा सोचूंगी? अब मैं इनसे कैसे बात करूंगी? अब मैं इनसे कैसे व्यवहार करूंगी? ये मेरी न्यू बॉल है। ज्यादा पावरफुल कौन सी है, जो बॉल आ रही है या जो हम न्यू बॉल फेंक रहे? सो द पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट, द पावर इज नॉट इन द पास्ट बॉल विच हैज कम टू अस। डेस्टिनी वो एक्चुअली नहीं है जो हमारे साथ होता है, डेस्टिनी वो है कि जब वो होता है हम क्या करते हैं और अपनी लाइफ को कैसा बनाते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको क्या बताएगी? कौन सी बॉल आने वाली है। राजयोग सिखाएगा कोई भी बॉल आने दो, अब कौन सी बॉल फेंकनी है उस पर फोकस करो, क्योंकि जो आने वाली है वो तो आने वाली है। कोई मुझे एक साल बता, पहले बता दे एक साल बाद आपको फलां व्यक्ति धोखा देने वाला है, वो तो देने ही वाला है क्योंकि वो बॉल मैं फेंक कर आई हूं। लेकिन कोई मुझे ये सिखा दे कि जब वो धोखा मिलेगा तब कैसे हैंडल करना है, तब कैसे, तब कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, तब उनको कैसे वाइब्रेशंस भेज के उनको हील करना है, और कैसे उनका पेन कंज्यूम नहीं करना, उनको पावर भेजनी है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा है, बॉल आने वाली या बॉल अभी भेजने वाली? इसलिए कल हमने देखा कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई कैसा भी बिहेव करे, हमें कैसी थॉट क्रिएट करनी है। तो जो हम फर्स्ट थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारी नई बॉल है। इसलिए कल हमने देखा अगर कोई मुश्किल सिचुएशन भी आ जाए ये मेरे कल्याण के लिए आया है। मेरी नई बॉल कौन सी चली गई? हाईएस्ट एनर्जी। एक बार मेरी फर्स्ट बॉल हाईएस्ट एनर्जी की चली जाती है ना, उसके बाद थॉट वर्ड बिहेवियर हाईएस्ट एनर्जी का आ जाता है। रेडी करने के लिए? अभी रेडी? फिर से करें एक बार। मेरी पावर क्या है? पहले कौन सी अटेंशन रखना है, कौन सी बॉल फेंकनी है। सेकंड अटेंशन क्या रखना है? जब कोई बॉल वापस आ रही है उसको देखते हुए अब मुझे कौन सी बॉल फेंकनी है। जो आ रही है इट इज पावरलेस इफ आई थ्रो द राइट बॉल नाउ। और इसीलिए कल हमने देखा कि लाइफ की सबसे मुश्किल जो सिचुएशन है कि हमारा कोई फैमिली मेंबर शरीर छोड़ के आगे जाता है, द टफेस्ट सिचुएशन जो हमारे साथ होनी है। तो कई बार हमको लगता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था क्या, वो ऐसे कैसे चले गए। कार्मिक अकाउंट डज नॉट डिपेंड ऑन कितना ड्यूरेशन हम किसके साथ रहे, कार्मिक अकाउंट डिपेंड्स ऑन हम दोनों के बीच की एनर्जी कैसी थी। अगर किसी के साथ मेरी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है तो मुझे वो कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है, ठीक करना है। इसको ध्यान रखो, कलेह कलेश का कार्मिक अकाउंट नहीं रखना है। एक जना अगर राइट बॉल भेजना शुरू कर दे कार्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होता है लेकिन दोनों में से एक भी अगर अपनी एनर्जी चेंज कर दे रिश्ता चेंज हो जाएगा। तो किसी भी कार्मिक अकाउंट को इस तरह से रहने नहीं देना। लेकिन कब हमारी लाइफ में कौन आता है और कब हमारे जीवन से वो जाता है, वो उस सोल की जर्नी होती है, उस सोल की जर्नी होती है। इसलिए हमने देखा कल उस सीन में भी हमें कौन सी बॉल्स भेजनी थी, हमने कौन सी बॉल्स भेजनी थी। कल हमने क्या देखा? कोई आगे जाता है हमें उनको कौन सी बॉल्स भेजनी है? gratitude भेजना है, blessing भेजनी है, peace भेजनी है, power भेजनी है, रोते हुए, दुखी होकर, खींचते हुए नहीं भेजना है उनको ज्यादा। इसका मतलब छोटी सी छोटी सिचुएशन से लेके बड़ी से बड़ी सिचुएशन तक हमारी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी चाहिए। तो इसको, इस बॉल को हम कलर देते हैं, ठीक है, जस्ट ताकि हमें सारा दिन याद रहे। जो हम भेजेंगे वो हाईएस्ट एनर्जी का होना चाहिए, वो प्योरेस्ट और पावरफुल होना चाहिए, तो हम उसको व्हाइट बॉल कहते हैं। और जो हमारे पास आ रहा है वो अलग अलग कलर्स के आएंगे, व्हाइट से व्हाइट भी आ सकता है, थोड़े से डार्क भी आ सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस आती हैं जो बहुत डार्क होती है, मतलब बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सामने से कोई हमारे साथ कोई भी कलर का बॉल फेंके, हमने कौन से कलर का फेंकना है, हमने कौन से कलर का फेंकना है, बस इसको पक्का करके जाना है यहां से कि डेस्टिनी वो नहीं है जो सामने वाला मुझे फेंक रहा है, डेस्टिनी वो है जो मैंने फेंकना है। किसी को थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज कैंसर होता है, टफेस्ट बॉल वापस आई है, लेकिन वो आत्मा कहती है इट्स ओके, मैंने अपना इलाज अच्छे से करना है, मैंने सब कुछ करना है, मैंने ठीक हो जाना है। हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी ठीक हो, लेकिन उन्होंने उस जर्नी को कैसे क्रिएट किया, खुश रहे, अपने समय को अच्छे से यूज किया, कोई नई चीज सीखी, कोई कुछ किया। तो कार्मिक अकाउंट जो आया था वो बहुत बड़ा था, लेकिन प्रेजेंट बॉल कैसा फेंका, प्योर भेजा, पॉजिटिव भेजा, पावरफुल भेजा, तो फीलिंग कैसी रही, हैप्पी। कोई और हो सकता है उसको सिर्फ 100 बुखार है आज, कार्मिक अकाउंट कैसा आया, सिर्फ और सिर्फ 100 बुखार, लेकिन कोई 100 बुखार में भी कितना हाय हाय कहते हैं, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। तो डेस्टिनी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस, डेस्टिनी इज व्हाट वी डू व्हेन समथिंग हैपेंस टू अस। सो द पावर इज इन द प्रेजेंट बॉल, पावर इज इन द प्रेजेंट बॉल, इसको हमेशा याद रखना है। कितनी भी मुश्किल बॉल आ जाए, पावर इज इन द प्रेजेंट बॉल। अब कुछ लोगों के साथ हमने बहुत 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 अच्छा किया होता है, अच्छे के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं होता है, और मतलब पूरा जीवन हमारे से उनकी तरफ कौन सी बॉल्स गई होती है, वाइट 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 वाइट, और लेकिन फिर भी उधर से अचानक से एक अलग ही रंग की आ जाती है, होता है ना ऐसे कभी। तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उनके साथ सब अच्छा अच्छा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टू नाउ टू रिमेम्बर, कर्मा किसके और किसके बीच है, कर्मा किसके और किसके बीच है, कर्मा आत्मा और आत्मा के बीच है, कर्मा शरीर और शरीर के बीच नहीं। कर्म कौन क्रिएट कर रहा है, आत्मा क्रिएट कर रही है। तो कार्मिक अकाउंट किसके बीच है, आत्मा और आत्मा के बीच कार्मिक अकाउंट है। अब सपोज ये बहन यहां बैठी है, मेरा इनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, वेरी ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट। फिर एक दिन हमने कहा चलो हमारी इतनी अच्छी आपस में बनती है, आप और मैं मिलकर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर हमने मिलकर वो भी स्टार्ट किया, वो भी बहुत 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 अच्छा चला, तो बहुत अच्छा कार्मिक अकाउंट बना। लेकिन चलते चलते करते करते मेरा इंटेंशन खराब हो गया, मैंने उनको चीट कर दिया, और मैंने उनको चीट और बिट्रे करके सारा नुकसान कर दिया, उनका सारा नुकसान कर दिया, मेरा तो फायदा ही फायदा हो गया। मेरी जीवन बहुत बढ़िया चली उसके बाद, लेकिन उनके जीवन में दर्द आ गया, दुख आ गया, उनका घर बिखर गया, उनके घर का धन कम हो गया, उनके बच्चे बिखर गए। ये सब कुछ क्यों हुआ, मेरे कर्म की वजह से हुआ। लेकिन दुनिया ने कहा कमाल है, धोखा इन्होंने दिया, ये तो मौज में जी रहे, वो तो अच्छे थे, वो ऐसे क्यों चल रहे, क्योंकि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हैं अभी। हमेशा याद रखना जो बॉल हम फेंकेंगे वो उसी सेकंड वापस नहीं आएगी, उसी सेकंड वापस नहीं आएगी। कोई बॉल एक सेकंड बाद आएगी, कोई एक मिनट, कोई एक घंटा, कोई एक दिन, कोई एक साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, लेकिन बॉल वापस जरूर आएगी, ये पक्की बात है। तो अब मैंने इनको चीट किया, बिट्रे किया, इतना नुकसान किया, मन दुखी हो गया, शरीर बीमार हो गया, धन कम हो गया, परिवार बिखर गया, किसका कर्म था ये, ये मेरा कर्म था। लेकिन मैंने मौज की जीवन जी, और मैं एक दिन मैं आत्मा आराम से शरीर छोड़ दिया, उस आत्मा ने भी एक दिन आराम से शरीर छोड़ दिया, अलग अलग रास्ते चले गए। लेकिन क्योंकि हमारा एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ है ऐसा वाला, हम फिर से जरूर मिलेंगे, हमने मिलना ही है। लेकिन जब हम मिलेंगे तो हमें याद नहीं होने वाला कुछ भी पहले का, कुछ भी याद नहीं होने वाला। लेकिन मैं आत्मा और वो आत्मा मिलेंगे जरूर। और जब हम मिलेंगे तो कोई दूर दूर के रिश्ते में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है, बड़े नजदीक आएंगे हम, बड़े नजदीक आएंगे। अब मैंने जो कर्म किया था उससे उनका मन दुखी हुआ, शरीर बीमार हुआ और उनका धन ऊपर नीचे हुआ, जीवन बिखर गया। इतना स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट मैंने क्रिएट किया उनके साथ, इतना स्ट्रांग। तो जब वो वापस मेरे संपर्क में आएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए या वहीं खत्म होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए या वहीं खत्म होना चाहिए? क्या चाहिए, कौन सा वाला चाहिए? कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए या खत्म होना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड। हाँ, मैं सोच रही थी कोई तो ये आंसर जरूर देगा, है ना। अच्छा वाला कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड जब होगा तो अच्छा वाला भी होगा, बहुत अच्छा वाला भी होगा। इतने अच्छे कर्मों का ही तो रिजल्ट है कि आज जीवन इतनी ब्यूटीफुल है, स्वस्थ शरीर में बैठे हैं, समय निकाल कर यहाँ आकर बैठे हैं, देश की सेवा के लिए चुने गए हैं। बताओ इसके लिए कितना श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इतना पुण्य का खाता जमा हो रहा है हर क्षण, ये ऐसे ही नहीं मिलता सबको ये भाग्य। तो ये सब कुछ हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य का रिटर्न है। बीच में कुछ कुछ हम दूसरे रंग की बॉल फेंक के आए थे, तो वो भी छोटी बड़ी बातों में वो आ जाता है। अब जो मैंने इनके साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, अब हम जब फिर मिलेंगे, आपको क्या लगता है कौन से रिश्ते में आएंगे हम? कौन से रिश्ते में आएंगे हम? कौन से रिश्ते में आएंगे? कौन से रिश्ते में आएंगे हम? अच्छा, सारे रिश्ते कवर कर दिए आपने। तो बेटा बन के आएंगे, बेटी बन के आएंगे, बहू बन के आएंगे, वो कहते पत्नी बन के आएंगे। इम्पोर्टेंट है कि नजदीक आएंगे। तो इसीलिए जब नजदीक के रिश्तों में कोई चैलेंज आ रहा हो ना, तो उसको रिश्ते के लेबल के थ्रू नहीं देखना कि बच्चा होकर ऐसे कैसे कर सकता है, भाई होकर ऐसे कैसे कर सकता है। याद रखना, सोलो नो जर्नी, सोलो नो जर्नी, मुझ आत्मा का, इस आत्मा के साथ एक पास्ट कार्मिक अकाउंट है। मैं आत्मा जरूर कुछ गड़बड़ तो इनके साथ करके आई हूं। पहले अपनी गड़बड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। हम क्या करते हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं ये बोलते हैं, ये गड़बड़ मेरे साथ कर ही नहीं सकते जब तक सामने वाला गड़बड़ मेरे साथ कर नहीं सकता जब तक। याद रखना है, बॉल मेरे पास आ नहीं सकती जब तक मैंने फेंकी नहीं थी। तो रिश्ते के लेबल के थ्रू देखते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, भाई ऐसे कैसे कर सकता है, आत्मा, मैं आत्मा, ये कार्मिक अकाउंट किसका है? मुझ आत्मा और इस आत्मा के बीच है। क्यों है ऐसा कार्मिक अकाउंट? क्योंकि मैं आत्मा कुछ करके आई हूं। जब आपकी शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या कहा था, कितना टाइम इकट्ठे रहेंगे? क्या बोला पंडित जी ने उस टाइम पे, कितना टाइम इकट्ठे रहना है? 7 जन्म। देखो आजकल कुछ लोग 1 जन्म भी इकट्ठे नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी पंडित जी कहते हैं 7 जन्म। क्यों? उसका मीनिंग है कि जो, इसका मतलब ये नहीं 7 जन्म पति 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 पत्नी बनना, ऐसे नहीं होता है। 7 जन्म क्यों बोलते हैं, और 7 जन्म भी नहीं, इसका मीनिंग है कि जो भी 2 आत्माएं इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आती हैं, वो पहली बार नहीं मिल रही हैं और वो आखिरी बार भी नहीं मिल रही हैं। वो पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, फिर से भी मिलेंगे। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में नहीं होता है, ये पेरेंट चाइल्ड में होगा, ये भाई बहन में होगा, किसी के साथ भी जिसके साथ आपका क्लोज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आप पहली बार नहीं मिल रहे। तो इसलिए जिस भी कार्मिक अकाउंट में एक डिफिकल्ट बॉल सामने से आ रही है, तो सबसे पहले याद रखना, ये गलती इनकी नहीं, ये गलती कौन करके आए, कौन करके आए? क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा, क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्षमा करके कौन सी बॉल अब चेंज कर रहे हैं? हमारा क्या होता है, जब वो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, ये हमारी फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है। लेकिन अब हम फिर से अगर गलत कर दिया, इवन इफ गलत मीन्स हर्ट क्रिएट किया, विक्टिम फीलिंग हुई, अंदर से नफरत आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो भी कौन से कलर की बॉल जा रही है? तो भी कौन से कलर की बॉल जा रही है, तो ब्लैक आ रही है, फिर से ब्लैक जा रही है, अब फिर से ब्लैक जाएगी तो फिर से ब्लैक आएगी, फिर से ब्लैक. एवरी नेक्स्ट टाइम वी मीट इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. दो लोग आज मिलते हैं, गार्डन में बैठते हैं या चाय पी रहे हैं, अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गई, अपने अपने घर चले गए. एक हफ्ते के बाद फिर मिले, क्या एनर्जी सेम होगी इस टाइम? नहीं. जिस एनर्जी पे लास्ट टाइम एंड की थी मीटिंग ना, उसी एनर्जी पे अब मीटिंग स्टार्ट होगी. या तो एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, या तो इधर मुंह करके उधर मुंह करके चले जाएंगे. सेकंड मीटिंग फर्स्ट मीटिंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी. थर्ड मीटिंग कैसी होगी वो और भी. एवरी नेक्स्ट मीटिंग बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, जब तक किसी एक मीटिंग में दोनों में से एक क्या करेगा. सिंपल है, देखो आपको तो आ गया ऑलरेडी कैसे करना है. दोनों में से एक भी कहेगा ना, चल छोड़ना पिछली बार क्या हुआ, मैं जाके बात करता. एंड जैसे उस एक ने वो किया, उस एक ने उस कार्मिक अकाउंट की एनर्जी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और जिसने किया उसका भाग्य बना. तो वेट नहीं करना कि व्हाइट बॉल वहां से आए, किसने फेंकनी है, किसने फेंकनी है, मैंने फेंकनी है. क्यों फेंकनी है, किसका भाग्य बन रहा है वो फेंकने से, मेरा. अगर किसी से बातचीत बंद है, किसी के साथ कुछ गांठें बनी हुई हैं पुरानी, यहां जाने से पहले यहीं से फोन कर देना आप उनको, यहीं से फोन करना. नीचे उतरते उतरते माइंड चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता. इस वायुमंडल को यूज करो, यहाँ पे बहुत व्हाइट बॉल्स फेंकी जाती है रोज आकर, इसलिए इसको यूज करो. इसलिए हमेशा सीखते तुरंत दान महापुण्य. बाद में दान करने का सोचेंगे तो माइंड बोलेगा ओ इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है मुझको, उन्होंने तो बात की नहीं. नहीं, अच्छा बनने की गिनती नहीं करना कभी भी. ये अच्छा आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा आप अपने भाग्य के लिए. वैसे ही आप देखो ना, किसी के लिए ऐसे हेट्रेड पकड़ के रखी हो या गुस्सा, कितना अंदर घुटन होता है, और जैसे बोलो छुके, फिनिश्ड, ओवर, माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं. बॉल तो उसी टाइम फील हो जाती है, जैसे ही क्षमा करो उसी टाइम ईजी हो जाता है. होता है या नहीं होता, राइट? कितना पकड़ के रखो, इतना टाइटनेस होती है, छोड़ दो एक मिनट में लूज. और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शरीर छोड़ने से पहले तो हमें हर कार्मिक अकाउंट को सेटल करना ही है. गांठ तो साथ में लेके जानी नहीं है, ये तो पक्का है, पक्का है. गांठ साथ में नहीं लेके जानी, ये किस किस का पक्का है, पक्का है. तो फिर वो क्षमा करना, क्षमा मांगना जाने से पहले तो करना ही है. बट कब जाना है, कब जाना है वो भी पता नहीं है. पहले तो चलो फिर भी हुआ करता था कि हाँ जी शरीर अब ओल्ड हो गया है, अब तो 80-90 के हो गए, अब जाने. अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एज में शरीर छोड़ सकते हैं. तो फिर कार्मिक अकाउंट किस टाइम सेटल करेंगे, फिर कब सेटल करेंगे? हाँ अभी, आज भी नहीं, अभी. और एक बार करना शुरू कर दिया ना, फिर तो सारे कार्मिक अकाउंट सेटल्ड ही चलते जाते हैं. मतलब हर सिचुएशन में व्हाइट बॉल, हर एक के बिहेवियर के साथ व्हाइट बॉल, हर एक सिचुएशन में व्हाइट बॉल. तो व्हाइट बॉल हमारा मतलब श्रेष्ठ कर्म की वाइब्रेशन. सिचुएशन कोई भी हो, श्रेष्ठ कर्म की वाइब्रेशन. अब एक मिनट आप सीधा होकर बैठे और किसी एक को सामने लेकर आए जिसके साथ कुछ गांठ है, चाहे वो छोटी सी है, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन है. भले उनसे अच्छे से बात बात करते हैं, लेकिन माइंड के अंदर कोई गांठ तो बनी हुई है, या किसी ने हमारे साथ कुछ सही नहीं किया था. पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है. उनको सामने लेकर आए अपने, नॉट एज अ फेस, नॉट एज अ बॉडी, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट. वो आत्मा, मैं आत्मा. हम इस बार पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हमारे बीच जो हो रहा है ये हमारा कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड है. अगर किसी ने हमारे साथ कुछ सही नहीं किया है, उनकी तरफ देखिए और उनसे कहिए, गलत उन्होंने किया है, लेकिन हम अपनी पूर्व गलती के लिए क्षमा मांगेंगे पहले, वो गलती जो हमें याद नहीं है हमने क्या की थी, क्योंकि वो इस कॉस्ट्यूम में आके नहीं की थी। तो हम उनसे कहेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने आपको दर्द दिया था, उस गलती के लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं। पहले क्षमा मांगना है उनसे। दूसरा संकल्प, आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। पहले क्षमा मांगना, फिर क्षमा करना। तीसरा संकल्प, पास्ट इज पास्ट, इस कार्मिक अकाउंट को, इस कार्मिक अकाउंट को मतलब जो नेगेटिव वाला चल रहा था, इसको आज खत्म करते हैं। मेरी तरफ से आज से एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होता है, जिसमें मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, ब्लेसिंग्स। मतलब मेरी तरफ से वाइट बॉल। अब एक सेकेंड के लिए उस ब्लेसिंग को फिक्स करते हैं कि कौन सी उनको ब्लेसिंग देनी है। उस आत्मा के अंदर जिस गुण की कमी है, लेट्स से कोई आपको डोमिनेट करता है या आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, तो उस आत्मा के अंदर प्यार और रिस्पेक्ट की कमी है। तो अगर उसके अंदर प्यार और रिस्पेक्ट की कमी है तो आप उनको ब्लेसिंग देंगे, आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, बस ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस चीज की उनके अंदर कमी है उसको हमें उनकी ब्लेसिंग बनाना है। भाषा कौन सी है, जैसे कल अपने लिए किया था आई एम अ, उनके लिए करना है यू आर अ। उस सेवन क्वालिटीज में एक क्वालिटी ले लें और उनको भेजें, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आज तक हमने बहुत थॉट्स उनके लिए क्रिएट की थी, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। वाइट बॉल। तो सबसे पहले क्षमा मांगे, फिर क्षमा करें, फिर उस पुराने कार्मिक अकाउंट को क्लोजर दें और फिर नया कार्मिक अकाउंट शुरू करें कि मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना, विच मीन्स प्योरेस्ट एंड हाइएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी मुझसे आपके लिए। और इसमें और शक्ति भरनी हो, अगर कुछ बहुत कड़क है तो हम एक सेकेंड में आत्मा यहां से निकलकर परम धाम, परमात्मा के पास, उस आत्मा को भी वहां लेकर आए और देखें कि हम दोनों परमात्मा के समीप बैठे हैं और परमात्मा की शक्ति भरते हुए अपने अंदर उस आत्मा को दें। और ये सिर्फ कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट के लिए नहीं करना है। लेट्स से आपको आपके बच्चे की चिंता हो रही है, या वहां कोई डिसीशन नहीं लिया जा रहा है, या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको परम धाम में अपने सामने लेकर आए, परमात्मा से शक्ति लें, उस आत्मा को शक्ति दें। ना डरना है, ना चिंता करनी है, शक्ति देनी है, दुआएं देनी है। परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भरें, उस आत्मा को शक्ति दें। ओके, इजी, सहज कर सकते हैं इसको। परमात्मा मैं आत्मा, आत्मा ऐसे भरे, ऐसे ले, ऐसे भरे, ऐसे ले। आज से हमने एक चीज चेंज करनी है, जो हो रहा है वो थॉट नहीं क्रिएट करनी, जो उनको देना है वो वाली थॉट क्रिएट करनी है। कल हमने देखा था, अगर हम उनकी एनर्जी की थॉट क्रिएट करेंगे तो वो तो यहाँ जा रहे हैं, हम भी कहाँ चले जाएंगे यहाँ, और हम अगर यहाँ चले गए तो वो कहाँ चले जाएंगे और नीचे. डोंट ऐड पेन टू पीपल्स पेन, गिव पावर टू हील पीपल्स पेन. तो कैसे करेंगे, सपोज ये बच्चा है, आप यहाँ हैं, बच्चा डर रहा है, परेशान है, तो हमारा संकल्प उसके लिए क्या होगा, तुम निडर निश्चिंत कॉन्फिडेंट आत्मा हो, यू आर अ पावरफुल सोल. सपोज बच्चा कोई डिसीशन नहीं ले पा रहा है, कोई कंफ्यूजन है, आप कहेंगे पावरफुल सोल, आपका हर डिसीशन एक्यूरेट है, आपका हर डिसीशन श्रेष्ठ कर्म पर आधारित है. जैसे ही हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करेंगे, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है और उनके डिसीशन में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है. लेकिन अगर हम बोलते हैं क्या कर रहा है, डिसीशन ही सही नहीं लग रहा, कितना कंफ्यूज्ड है, ऐसे करेगा तो कैसे डिसीशन लेगा, तो सामने वाला तो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है और हम उनको कंफ्यूजन वाली एनर्जी देंगे तो उनका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा. कभी कभी हमें दिखाई देता है कि वो सही कर्म नहीं कर रहे हैं, सही कर्म मतलब सही डिसीशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितना भी समझाओ वो अपने डिसीशन पर कैसे हैं, बिल्कुल अटल, मुझको यही करना है. सो टू रिमेम्बर, आपका वो बच्चा है, लेकिन याद रखें वो बच्चा नहीं, वो सोल ऑन अ जर्नी है. हमारे घर में जितने हैं वो सब सोल ऑन अ जर्नी है. हर आत्मा अपने साथ क्या लेकर आया है, हर आत्मा अपने साथ क्या लेकर आई है, अपने कर्म और अपने संस्कार लेकर आई है. एज अ पेरेंट हमारी प्योरेस्ट इंटेंशन होती है कि हमारे बच्चे की डेस्टिनी परफेक्ट हो और हम पूरा पुरुषार्थ उसके लिए करते हैं. लेकिन वो बच्चा आत्मा है जो वो अपने पूर्व कार्मिक अकाउंट अपने साथ लेकर आया है, कभी भी अचानक कोई भी बॉल उनके जीवन में सामने से आ जाती है, उस समय एज अ फैमिली हमारा क्या रोल है, उस समय एज अ फैमिली हमारा क्या रोल है. हम उनके जीवन में आने वाली बॉल को जरूरी नहीं है रोक सकते हैं, लेकिन हमारा रोल है उनके मन को शक्ति देना ताकि वो इस समय कौन सी वाली बॉल भेंगे, वाइट बॉल. दिस इज रोल ऑफ फैमिली. लेकिन अगर फैमिली भी वो आती हुई बॉल को देखकर डर गई तो फिर तो सबके बॉल्स कौन से कलर के जाने लग जाएंगे उसके टाइम. ब्लैक बॉल इज नॉट जस्ट नेगेटिव, फियर इज अ ब्लैक बॉल, वरी इज अ ब्लैक बॉल, मतलब लोअर एनर्जी, लेफ्ट हैंड वाले ब्लैक बॉल, राइट हैंड वाले व्हाइट बॉल. तो अगर घर में किसी के सामने भी कोई कार्मिक अकाउंट आता है, कम से कम उस घर में एक जना होना चाहिए जो अपने वाइब्रेशन में कहां रहेगा, ऊपर, और वो वाइब्रेशन से वो दूसरे को शक्ति देकर उनको भी वो व्हाइट बॉल भेजने की ताकत दे देगा. इसको परिवार कहा जाता है, इसको दोस्त कहा जाता है, इसको साथी कहा जाता है, इसको प्यार कहा जाता है, इसको रिस्पेक्ट कहा जाता है, इसको पावर कहा जाता है. लेकिन दूसरे को देखकर खुद परेशान, खुद कंफ्यूज्ड, खुद डरे हुए, तो हम उनके कार्मिक अकाउंट को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और हम खुद एक और कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं. तो हमें अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है, पावर हाउस, पावर हाउस. इसलिए बहुत जरूरी है कि हर रोज अपनी वाइब्रेशन को कहां लेकर जाना है. इस समय कलयुग का जो कल हमने देखा क्या होने वाला है, रात से क्या होने वाली है, देखो हम रात को यहां बैठे थे, अभी सुबह भी हम यहीं बैठे हैं. रात को हमारा दिन का अंत था, थके हुए थे, सुबह रेस्ट किया, सुबह नहाए धोए, फ्रेश एनर्जेटिक. दिस इज ओनली द जर्नी ऑफ द सोल. तो अभी जो दुनिया चल रही है ये रात का भी घोर रात्रि है, इसलिए लोग आजकल कलयुग नहीं बोलते, घोर कलयुग है. घोर कलयुग मतलब घोर रात्रि, पिच डार्क, बट आफ्टर पिच डार्क बिगिन्स द डॉन. तो वो डार्कनेस एंड डॉन ना कट्ठे टाइम पर आता है, किसी के लिए वो रात होती है, किसी के लिए वो सुबह होती है. घर में भी देखें, कोई गुड नाइट बोलता है तो कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है, क्योंकि कोई सोने जा रहा होता है, कोई उठ रहा होता है. इस समय ध्यान रखना कि सोने नहीं जाना, जगे रहना. इसको कहते हैं जागरण, इसको कहते हैं अवेकनिंग. सोना मतलब वो पुरानी सोच, पुराना व्यवहार, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा, ये सब पुरानी सोच, ये कलयुगी सोच. सत्योगी सोच, कुछ भी आया यहां से क्या जाना है, व्हाइट बॉल. तो सत्योग बनाना है. लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये बहुत इजी नहीं है. बहुत इजी नहीं है इन द सेंस, जो मैं आत्मा ने द्वापर युग से कलयुग में जितने कर्म किए हैं, जो भी कार्मिक अकाउंट बचे हैं, वो अचानक अचानक बॉल आ रही है। इसलिए अगर आप देखो आजकल अचानक अचानक बहुत कुछ हो रहा है, अचानक 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 हो रहा है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट का क्लोजर का टाइम है। जैसे कोई लंबा सीरियल चलता है, चल रहा है, एक साल से चल रहा है, दो साल से चल रहा है, आज उसका लास्ट एपिसोड है, तो लास्ट एपिसोड में क्या होता है, लास्ट एपिसोड में उस सीरियल में क्या होता है, सबकी कहानी क्या होती रहती है, क्लोज क्लोज क्लोज। अब अगर किसी ने सारा सीरियल ना देखा हो और वो लास्ट एपिसोड में आके बैठ जाए, उसको कुछ समझ में आएगा? वो कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जिसने पूरा देखा होता बोलते चुप करके बैठना, देखो कुछ समझ में नहीं आने वाला, कहानी तो देखी नहीं है। तो हमें भी द्वापर युग से अब तक की अपनी कहानी पता नहीं है, लेकिन क्लोजर एपिसोड में सारी स्टोरीज क्या होने वाली है, क्लोज कंप्लीट। इसीलिए अचानक 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 कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ भी आ जाए पावर किस में है, प्रेजेंट। लेकिन टफेस्ट सिचुएशन में हाईएस्ट बॉल फेंकने के लिए उस हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्शन करके रखना, नहीं तो वो सिचुएशन और वायुमंडल ही हम पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तो इस समय घर में, परिवार में, शहर में, देश में, दुनिया में अचानक कुछ भी होगा, अचानक। इट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड प्लान्ड, इट विल हैपन सडनली। और इतना पावरफुल रहना है कि सडनली कुछ भी आ जाए, हमारी स्थिति कैसी रहेगी, कैसे रहेगी, पावरफुल। और वो कैसे रहेगी, रोज अपने की बैटरी को क्या करना है, चार्ज। और जो रोज अपनी बैटरी को चार्ज करता रहता है, वो सिर्फ खुद पावरफुल नहीं रहेगा, वो दूसरों की बैटरी को भी चार्ज कर देगा। इस समय बच्चों के मन की स्थिति पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो इन खिलौनों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब से पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तब से इससे एडिक्टेड हैं। हम में से तो नहीं कोई एडिक्टेड फोन से, हम में से तो नहीं कोई एडिक्टेड फोन से, कौन कौन है, हाथ उठाना जरा। 2025 अगर हम इस खिलौने से डी एडिक्ट नहीं हुए, तो फिर मन का मालिक बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसके बाद अभी तो नए नए खिलौने आने वाले हैं ना, नई नई चीजें आने वाली हैं, छोटी छोटी तरीके कर लो, इसको फिक्स करो, इसकी गुलामी को खत्म करना है। इसकी गुलामी के बिना यहाँ राजा बनना इम्पॉसिबल, स्वराज्य लाना इम्पॉसिबल। कैसे पता चलता है एडिक्शन है, कैसे पता चलता है एडिक्शन है, क्यों फील हो रहा है एडिक्शन है, क्या क्या साइन है उसका, चेकिंग एवरी 5 मिनट्स, वेरी गुड। तो डी एडिक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, चेकिंग आफ्टर। हाँ, अपना टाइम रख दो। डी एडिक्शन सिर्फ कुछ दिन की कहानी होती है, सिर्फ कुछ दिन की कहानी है, उसके बाद तो आजादी ही आजादी है। कुछ दिन की एक विड्रॉल सिम्टम है, उसके बाद तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप करें। रात को फोन अपने पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ जिनका क्राइसिस है और रात को कोई भी कॉल आ सकता है वो अलग, बाकी सब लोग रात को फोन अपने साथ सोकर लेने लेकर क्यों सोते हैं, क्योंकि अपने साथ रखते हैं तो बेड में बैठकर उसको देखना शुरू कर देते हैं। जिसने भी रात को सोने से पहले ये ऐसे 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 किया, उसको गहरी नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि उसने सोने से पहले बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे वर्ड्स इस कलयुगी दुनिया के से भर लिए अपने अंदर। कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला, जस्ट फिल 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 बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो फिर वो नींद में हमारी एंग्जाइटी का रूप ले लेते हैं, डीप स्लीप नहीं आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह का फर्स्ट घंटा, लास्ट आवर बिफोर स्लीपिंग एंड फर्स्ट आवर व्हेन वी वेक अप, वी डोंट नीड टू स्क्रोल द फोन। ये इतना कर सकते हैं, ये इजी है, ये कर सकते हैं कि एक घंटा सोने से पहले, एक घंटा उठते ही ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, मैसेजेस भी नहीं देखने। किसी का अर्जेंट है ना, वो फोन करेगा आपको, देखना एक मैसेज होता है, फिर सारे देख लेते हैं उस प्रोसेस में, और फिर सुबह सुबह अपने अंदर यहाँ बहुत कुछ भर देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो भी सुबह सुबह जानने की जरूरत नहीं है, कुछ आपके काम का होगा तो आपको बता देंगे, सुबह सुबह नहीं। द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, वो एकदम चूस लेगा सुबह सुबह जो हम डालेंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में जाता है। फर्स्ट वन आवर, लास्ट आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप, इसमें ध्यान रखना है। इतना है, इजी हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है। सेकेंड, नोटिफिकेशन साइलेंट होनी चाहिए, ये टिंग 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 नहीं बजना चाहिए, टिंग 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 जिसका बजता है उसका माइंड और ब्रेन दोनों पर असर होता है, क्योंकि हर बार जब वो टिंग बजता है हमारा ध्यान उस तरफ खिंचता है, हमारे माइंड को ऐसा लगता है कुछ बहुत अर्जेंट हुआ हो, जाके फोन उठाते हैं तो किसी ने लिखा होता है गुड मॉर्निंग, लेकिन हमने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ बहुत अर्जेंट आ रहा है। हमेशा याद रखें, कुछ अर्जेंट पे कोई मैसेज नहीं करता है, अर्जेंट पे कोई क्या करता है, फोन करता है। अगर किसी ने कुछ मैसेज भेजा है मतलब वो एक घंटा तो आराम से वेट कर सकता है, तो हम क्यों खींचे चले जाते हैं उसके बाद। वो ऐसी एक चीज है कि आप नहीं भी बजता है ना तो यहां बजने लग जाता है थोड़ी देर के बाद, ऐसा लगता है कुछ बजा है, वहां जाके देखो तो कुछ हुआ नहीं होता। इट इज डिस्ट्रैक्टिंग द माइंड, अफेक्टिंग द ब्रेन, अफेक्टिंग द बॉडी। सारे नोटिफिकेशन साइलेंट करें, सारे नोटिफिकेशन, फोन बजेगा हम उठाएंगे लेकिन टिंग 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 नहीं चाहिए ये बीच में, ये हो सकता है, ये इजी ये हो सकता है। थर्ड चीज, जिस एप्लीकेशन से एडिक्टेड है उस एप्लीकेशन को आज अभी अनइंस्टॉल कर देते हैं। कितना डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है मेरी सबसे अच्छी चीज कोई मुझसे छीन कर लेके जाने वाला है। ये दो तीन दिन ही लगेगा, सिर्फ थोड़े दिन के बाद लगेगा, क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे बैठ के, क्या कर रहे थे हम, कितना टाइम नहीं कितनी एनर्जी। एक इक्वेशन याद रखना है, कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। अगर आप एक ग्राफ बनाएं कि दुनिया में जैसे जैसे कंटेंट आया, मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य और रिश्ते कैसे असर हुए, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टेंट। हम सब उस टाइम पे थे ना जब फोन नहीं था, कौन कौन उस टाइम पे था जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, तो हम ही तो वो है ना जिसने देखी है ये जर्नी सारी। पहले वो तार वाला फोन आया, पहले तो हम पड़ोसी के घर पे जाके बात करते थे, हम लेटर भेजते थे, तब ज्यादा स्ट्रेस था या अब ज्यादा स्ट्रेस है। कल कोई कह रहा था कि हम तार भेजते थे, फिर वहां से तार आता था, फिर दो दिन बीच में लगते थे, लेटर भेजो तो 10 दिन बीच में लगते थे। आज हम मैसेज भेजते हैं फिर हम वेट करते हैं, एक टिक हुआ या दो टिक हुआ, अच्छा दो टिक हुआ, चल शुक्र वहां पहुंच गया। उसके बाद हर थोड़ी देर बाद देखते हैं ब्लू हुआ या ब्लू नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। फोन थोड़ी स्ट्रेस क्रिएट करता है, फोन ने तो हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया, लेकिन हम उसको यूज कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर चॉइस है। तो हम वो लास्ट जेनरेशन है जिसके अंदर इतनी पेशेंस थी कि चिट्ठी जाती थी, फिर वहां से चिट्ठी लिखी जाती थी और आती थी, तो इसमें कितना टाइम लग जाता था दोनों चीजों के बीच में, 10-15 दिन। तो हमारे पास वो पेशेंस है, जो आज के बच्चे हैं जिनके बचपन से ये है उनके पास वो पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो पेशेंस क्रिएट ही नहीं की। हम वो जेनरेशन है जिसको बोला जाता था अच्छा आपको ये चाहिए, ये आपको दिवाली पे मिलेगा, तो हम बोलते थे वो तो दिवाली तो 6 महीने दूर है, वो बोलते थे फिर वेट करो 6 महीने। तो हमारे पास वो पेशेंस है। आज के बच्चे क्या करते हैं, गए फोन उठाया, एप्लीकेशन उठाया, क्लिक किया, उसमें लिखता है विल बी डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। पेशेंस कहां से आएगी? एंड उसमें फिर ये भी लिखते हैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो आप कैंसिल कर सकते हैं। पता कितनी पावर लगती है व्यक्ति को, मतलब पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में चल रही है। इसीलिए जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है जो उनके अनुसार नहीं होता है, उनके लिए उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज दे आर लिविंग लाइक दिस के पूरी लाइफ मेरे कंट्रोल में ये नहीं है, पर दुनिया मेरे कंट्रोल में मेरे। तो हम लास्ट जेनरेशन है जिसको ये आता है, अगर हम इसको घर में करना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे शक्ति उनके अंदर भी आएगी। तो आज उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना, 2 महीने डी अडिक्ट होकर फिर अगर लगे तो इंस्टॉल करना। वैसे मैं आपको बता रही हूं आपका उसको वापस इंस्टॉल करने का कोई मन नहीं करेगा, कोई मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। कर सकते इस पे नहीं हाथ उठा, देख लो किसे, आज 3 दिन तो करके देखो कितनी लिबरेशन मिलती है, फिर डिसाइड कर देना। और लास्ट चीज, जब आप घर पे रह रहे हैं, आप पोस्टिंग पे नहीं है, आप घर पे हैं, शाम को आने के बाद अपने फोन को एक जगह पर रखें और उसको लैंडलाइन की तरह यूज करें। फोन बजेगा, जाना है, फोन उठाना है, बात करनी है, वापस उधर रखना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब ऐसे बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय, एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय हर एक ऐसे ऐसे। दिस हैज टू चेंज। क्योंकि इसका मन, शरीर और रिश्तों पर असर पड़ रहा है। बात क्या करने के लिए, इससे अच्छा तो ये देखो, दो लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है ना घर में अगर, तो उनके पास फोन है तो इसलिए वो बोर नहीं होते। पहले क्या होता था, ऐसे सन्नाटा छा जाता था घर के अंदर, फिर कितनी देर इतने सन्नाटे में रहेंगे, तो कोई ना कोई एक जना बात करता था, एक करता था तो अभी तो बोर ही नहीं होते ना। नई बात करनी, तुम नई बात करो, मेरे पास तो मेरा फोन है और फोन पे मेरे साथ हजारों लोग है बात करने के लिए। दिस इज अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स, हर चीज पर अफेक्ट हो गया। साधन हमारे आराम के लिए बना था, इस साधन ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन हम गुलाम बनकर अगर जिएंगे तो वही साधन हमारे, तो इसलिए शाम को आके उसको एक कोने में आप पहले रखें, धीरे धीरे आपकी फैमिली के हर मेंबर से हम फोन वहां रखवाएंगे। और ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बचपन से एडिक्ट हो रहे हैं। हाँ, और एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट, खाना खाने के टाइम क्या ऑन नहीं होना चाहिए, टीवी भी नहीं ऑन होना चाहिए, कोई स्क्रीन नहीं खाना खाने के टाइम। वो सारे शब्द खाने में जाते हैं और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इसको तो आप रूल आज से बना लीजिए अपने घर में कि 10 मिनट्स 15 मिनट लगते हैं खाना खाने के लिए, उस टाइम पे ना फोन ना टीवी। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग बच्चों की हेल्थ पर असर कर रही है। माइंडफुल ईटिंग, साइलेंस में बैठे उसको याद करें, अपने संकल्प बोले, खाने पे हमेशा या तो साइलेंस में करें या अच्छी बातें हो, कभी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। लोग तो न्यूज देखते देखते खाना खाते, बताओ क्या जाएगा खाने के अंदर। बच्चों को कार्टून फिल्म लगा के दे देते हैं, लेकिन कार्टून फिल्म में भी कोई किसी को गिरा ही रहे तो उनके लिए तो वही वायलेंस है ना। तो नो, ये गलती हमने की थी, इसको ठीक भी, वो 2-3 दिन रोएंगे, हो सकता है वो कहेंगे हमें खाना नहीं खाना, तो प्यार से बोलना भले मत खाओ, भले मत खाओ। कितने दिन खाना नहीं खाएंगे, कितने दिन खाना नहीं खाएंगे, बोलो भले नहीं खाओ, अभी रोने दो, लेकिन फिर जीवन में नहीं रोएंगे, अभी रोने दो ना। क्या होता है रोने से, क्या होता है लड़ने से, लड़ेंगे, नाराज होंगे, रूठेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे घर में खाना कैसे खाना है, 15-20 दिन कर लेंगे, उनको खुद चेंज दिखाई देगा, उसके बाद वो जहां अकेले भी होंगे तब भी फोन नहीं देखेंगे। लेकिन शुरू किसको करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, तो अपने संकल्पों में ऐड कर दो, मैं अपने साधनों का मालिक हूं, आई एम द मास्टर ऑफ माई गैजेट्स, बस स्वराज्य। चलिए 1 मिनट फिर सीधा होकर साइलेंस में स्ट्रेट कम टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं आत्मा, कर्म योगी आत्मा, हाईएस्ट वाइब्रेशन की स्थिति में कर्म करने वाली है। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म प्योर है, डिवाइन है। मेरा हर कार्मिक अकाउंट बहुत ब्यूटीफुल है, हर एक रिश्ता हार्मनी में है। मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हो, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हो, मेरा कर्म, मेरी जिम्मेवारी, देश की सेवा, देश की रक्षा। ₹140 करोड़ आत्माओं की दुआएं मेरे साथ हैं, ये मेरा भाग्य है। इन दुआओं से मेरा परिवार पलता है, ये मेरा भाग्य है। वाह मेरा भाग्य, इतनी दुआएं तो हर दिन कोई नहीं कमाता जितनी मुझ आत्मा को मिलती है। परिवार बच्चे इन दुआओं से पलते हैं। दुआओं से पलने वाले परिवार में असंभव भी संभव हो जाता है। परमात्मा का शुक्रिया, मेरे कर्मों का शुक्रिया, मेरे श्रेष्ठ भाग्य का शुक्रिया। तीन दिन से हम सीख रहे हैं आई एम अ पीसफुल सोल, तो कईयों के मन में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कर्म है, जो हमारी जिम्मेवारी है, उसमें तो हिंसा भी है। हिंसा वो हमारा रोल है, उसके पीछे की इंटेंशन रक्षा है, और वो रक्षा हाईएस्ट इंटेंशन होती है। इसीलिए ये रक्षा हमारा हाईएस्ट कर्म है, लेकिन वो हाईएस्ट कर्म करते हुए भी हमारी स्थिति एकरस रहे, एकरस एकाग्र। हाथों से कर्म करते हुए मन की स्थिति में किसी के प्रति कोई और भावना नहीं, ये योगी जीवन है, ये योगी जीवन है। और जैसे जैसे हम अपनी वाइब्रेशन को हायर लेकर जाएंगे, दूसरे के कर्म का असर हम पर नहीं पड़ेगा। हम निमित्त बनकर जो करेंगे वो निमित्त बनकर करेंगे, लेकिन मन की स्थिति बिल्कुल बेदाग, एकाग्र, एकरस। किसी की रक्षा करना ये पुण्य का कर्म होता है, और पूरे देश की रक्षा करना, इस पुण्य का तो क्या गायन किया जाए। लेकिन याद रखना है, मेरा परिवार पैसों से नहीं, दुआओं से पलता है। इसलिए दूर रहते हुए भी कभी उनकी चिंता नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, पूरा देश उनका परिवार है, पूरा देश उनको दुआएं देता है, और वो सदा सुरक्षित रहेंगे। अब हम इसी साइलेंस में उठेंगे।